जहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास का सवाल है, इसे उनके मूल्यांकन की विडम्बना या एकांगिता ही कहा जाएगा कि उन पर जो रायजनी होती है आम तौर से मात्र उनके रामचरितमानस को केंद्र में रखते हुए, जबकि हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस उनकी अकेली रचना नहीं है। छोटे बड़े महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण एक दर्जन के लगभग उनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। इन रचनाओं की समग्रता में तुलसीदास को देखना ही उन्हें समूचेपन में देखना है। यदि कालक्रमानुसार उनके कृतियों तथा उनमें प्रतिबिंबित उनके कवि रूप पर विचार करें तो हम पाएंगे कि अपने पूर्ववर्ती कृतियों में वे आध्यात्मिक और स्वप्न दृष्टा जाता है, जबकि परवर्ती कृतियों में डॉक्टर मेघ के अनुसार धार्मिक और यथार्थ दृष्टा। कवितावली, दोहावली जैसी कृतियों के अलावा हनुमान बाहु जैसी अपनी परवर्ती रचना तक आते आते तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मानस के राम राज्य का स्वप्न दृष्टा यथार्थ की कर्ता का सीधे साक्षात्कार कर रहा हो, स्वप्न से उसका मोह भंग हो चुका हो। यही सही है कि गोस्वामी जी बाहुक में भी राम पर अपनी आस्था नहीं छोड़ते, किंतु व्यक्तिगत शारीरिक यातना से मुक्ति दिलाने में असमर्थ उनके राम और उनके हनुमान उनके द्वारा चित्रित अपनी सारी सामर्थ्य के बावजूद उन्हीं की नजरों में उन्हें सामर्थ्यहीन लगने लगते हैं। वात कष्ट हो या बाल तोड़, उसकी पीड़ा तथा यातना को भोगते हुए गोस्वामी जी की आर्त पुकार को उनकी पदों में सुनकर ऐसी अनुभूत होती है मानो अपने घर में ही हमारा अपना ही कोई बुजुर्ग पीड़ा से कराह और चिल्ला रहा हो। इन पदों में गोस्वामी जी जीवन यथार्थ के भोक्ता और दृष्टा बनकर सामने आते हैं, राम राज्य का स्वप्न देखने और दिखाने वाले के रूप में नहीं। गोस्वामी जी के ये पद हमें उनके उन पदों से अधिक जीवंत लगते हैं जहां वे अपनी सामाजिक मिशन के तहत एक मिशनरी के रूप में हमसे मुखातिब होते हैं। अपने ही पाप ताप ते की सापते बढ़ी है बाहु वेदना कही न सही जात है, औषध अनेक जंत्र मंत्र टूटक आदि की ये बादी भय देवता मनाए अधिकाती हैं। कर तार भर तार हर तार कर्म काल को है, जग जाल जो न मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तुम मेरो कहो राम दूत, ढील तेरी वीर मोहि पीरते पीराती है। वस्तुतः गोस्वामी जी की सफलता का बहुत महत्वपूर्ण कारण उनकी लोकचित्त संबंधी अभिज्ञता है। साधारण जनता के मनोविज्ञान तथा सामाजिक आचरण की उनकी समझ है, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के गहरे अनुभव हैं और इन सब को भक्ति तथा कविता से सम्यक रूप से जोड़ पाने की उनकी सामर्थ्य रचना सामर्थ्य है। ऊपर से देखने में बातें आसान लग सकती हैं, जबकि ये आसान नहीं है। समूचे जीवन की साधना से ही इन्हें उपलब्ध किया जा सकता है और गोस्वामी जी की साधना ऐसी ही साधना थी। कवितावली तथा अन्यत्र अपने प्रारंभिक जीवन के जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वे सूचित करते हैं कि कठोर दरिद्रता, अपमान, सामाजिक लांछना और तिरस्कार झेलते हुए भी उन्हें जिंदगी का एक एक कदम नापना पड़ा था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में लोक जीवन के चित्र जो साधारण जन के अपने अनुभवों के दायरे के भीतर हैं तथा लोक मन की जो अभिव्यक्त हुई है उसमें भी उनकी उतनी ही अंतरंगता है। शुक्ल जी ने गोस्वामी जी के काव्यत्व की गहरी तथा सार्थक छानबीन की है तथा यह बिल्कुल सही कहा है कि लोक हृदय की अपनी पहचान में गोस्वामी जी अद्वितीय हैं। रामोन्गमन के समय ग्राम वधुओं का सीता से राम की ओर इंगित करते हुए यह पूछना कि ये तुम्हारे कौन है, और सीता का मात्र देह भाषा के स्तर पर उन्हें सब कुछ बता देना साधारण जन के मनोविज्ञान तथा सामाजिक व्यवहार के प्रति गोस्वामी जी की अंतरंग जानकारी का प्रमाण है। स्मरण रहे कि सीता की का देह भाषा के स्तर पर काम बधुओं से सब कुछ कह देना राशि व्यवहार का निदर्शन न होकर लोक व्यवहार ग्रामीण जनों की मर्यादा तथा सामाजिक आचरण का ही सूचक है। गोस्वामी जी पंडित थे, कला विदग्ध थे, किंतु भीतर कहीं एक नितांत गवई मन के भी स्वामी थे। उनके गवई संस्कार, उनकी भाषा का गवई लहजा, उसमें रची पगी लोक रस की मिठास उनकी लोकप्रियता का राज है। सुख अथवा दुख के अवसरों पर जैसी उक्तियां साधारण जनों के मुंह से सहज ही फूटती हैं, गोस्वामी जी उनकी अंतरंगता से वाकिफ थे। उनके रामचरितमानस तथा दूसरी कृतियों में ढेरों उक्तियां ऐसी हैं जिन्हें अपढ़ से अपढ़ जन सुख दुख के क्षणों में बरबस दुहरा देते हैं। उनके मन मस्तिष्क में वे जैसे सदा सदा के लिए नक्श हो गए हैं। खेती न किसान को, भिखारी को, न भीख बलि बनिका को बनी, न जो न चाकरों को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एक न सो कहां जाई का करी। विपत्ति तथा दुख के क्षणों में साधारण ग्रामीण जनों के मुख से कहां जाई का करी की यह व्यवस्था तथा निराशा गर्भित उक्ति आसानी से सुनी जा सकती है। अन्यथा क्या कारण है कि राम कथा लिख कर गोस्वामी जी करोड़ों लोगों के कंठहार हो गए, जबकि राम कथा ही लिखने वाले आचार्य कव केशव के पुस्तकालयों में को पुस्तकालयों में ही स्थान मिल सका। यदि रामचरित ही काव्य है और जैसा कि मैथिली शरण जी की उक्ति है कि उसे कहकर कोई भी सहज ही कवि बन सकता है, तो फिर करने को रह ही किया जाता है। राम के चरित पर ऐसी सहज कविताई करके कवि कहलाने वाले लोग होंगे, किंतु गोस्वामी जैसी लोकप्रियता शायद इतनी सहज लब्ध नहीं होता है। होती तो अधिक पंडिताई से उसे लिखने वाले केशव जरूर गोस्वामी जी को पछाड़ देते, वे उन्हें पछाड़ना तो दूर उनकी लोकप्रियता को छू भी नहीं सके। इसका कारण यह है कि उन्होंने राम कथा अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए पांडित्य वर्ग और कला रसिकों के लिए राज दरबार में रह कर लिखी। साधारण जन की जहाँ पहुँच भी संभव न थी, और केशव से बड़े पंडित होते हुए भी गोस्वामी जी ने उसे जनता के बीच बैठकर जनता की भाषा, उसके लहजे और उसके मन से जोड़कर साधारण जनों के लिए लिखा, राज दरबार को लानत मानते हुए लिखा। और यह और बात है कि पंडित जन और कला रसिक भी उसके जादू से बच नहीं पाए। हम चाकर रघुवीर के पटव लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। नर की मनसबदारी को छोटे छोटे राजा नवाब ही नहीं, शहंशाह अकबर की मनसबदारी को लानत मानने वाले ये गोस्वामी जी ही हो सकते हैं। भक्ति आंदोलन की चेतना से जुड़े संत और भक्त ही हो सकते हैं। प्राकृत जनों पर एक भी पंक्ति न लिखने का हट, शहंशाहों की मनसबदारी को लानत मानने का भाव उसी में आ सकता है जिसकी जड़ें जनता के बीच गहरी से गहरी गई हों। धरती पर गहरी जड़ें रोपने वाला वृक्ष ही सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकता है, बड़े बड़े झंझावातों का सामना कर सकता है। गोस्वामी जी ऐसे ही ऊंचे छतनार वृक्ष थे। उनकी शक्ति का स्रोत जनता थी, उनकी आस्था का आलंबन राम थे, राम के अलावा कोई नहीं। उनका मस्तक राम के सिवा किसी के समक्ष नत नहीं हुआ, कोई भी प्रलोभन उन्हें नहीं भरमा पाया। जनता के प्रेम और राम के निश्चल निस्वार्थ भक्त के बूते पर वे सुख से पांव पसार कर सोए, निश्चिंत मन निश्चिंत प्राण। गोस्वामी जी की सामाजिक सोच के तमाम पहलुओं से हमारा मतभेद हो सकता है, उन्हें हम निसंकोच उनकी सोच और उनके युग की सीमा के रूप में रेखांकित करते हैं, किंतु उनके इस जादू को जो जनता के सिर चढ़कर बोला है हम नहीं नकार सकते। हमें उनके रचनाशीलता के भीतर से उनके इस गुर को पहचानना है, उनकी इस ताकत का अंदाजा लेना है, जनसाधारण के प्रति उनके संवेदनात्मक लगाव से सीखना है। जनता से जुड़ने की बातें सब करते हैं, किंतु जनता से जुड़ना कहते किसे हैं इसे हमें गोस्वामी जी बताते हैं। वे संत तथा भक्त बताते हैं जो जनता के लिए जिए और जनता के उज्ज्वल भविष्य की सदिच्छा लिए मरे और सदा सदा के लिए जनता के दिलों में अमर हो गए। निश्चय ही जनता के बीच तुलसीदास की लोकप्रियता का आधार महासाधारण जनता का पिछड़ापन और उसकी मध्यकालीन मानसिकता ही है। ऐसा मानना आत्म प्रवंचना के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमें मानना होगा कि तुलसीदास कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर इस जनता के मन प्राणों की गहराई में जाकर छूते हैं, उसे ऐसी परितृप्ति प्रदान करते हैं जो न तो उनके अपने समय का कोई रचनाकार उसे दे सका न बाद के समयों का। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। हमने कहा है कि गोस्वामी जी को समूचेपन में समझने के लिए हमें उनके समूचे कृतित्व के बीच से उन्हें समझना होगा। मानस उनकी सबसे लोकप्रिय रचना भले हो, वह उनकी एकमात्र रचना नहीं है। परवर्ती रचनाओं में जैसा कहा गया स्वप्न दृष्टा के बजाय यथार्थनिष्ठ अधिक हैं। मानस कथा काव्य है, उसमें विविध प्रकार के चरित्र हैं, भाव और मनोदशाओं का वैविध्य है, कथाएं और कथाओं की अंतरधाराएं हैं, नाना पुराण नियम और आगमों का सार है तथा कुछ और भी है, अर्थात राम के रूप की वह कल्पना है जो न वाल्मीकि दे सके न भवभूत तथा उनके अन्य पूर्ववर्ती। वह तुलसी की अपनी मौलिक देन है, जहां राम ईश्वर भी हैं। ब्रह्म भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी और अयोध्या के राजकुमार रावण जैसी शक्ति के हंता, किसी के पद, किसी के मित्र, किसी के भाई, किसी के सेवक, किसी के स्वामी और किसी के पुत्र। ईश्वरीय रूप के साथ मानवीय रूप और मानवीय नाते रिश्तों में वैधी राम की इस संश्लिष्ट छवि को तुलसी ने अपनी कल्पना, अपनी आस्था और साधारण जनता के की राम के प्रति मनोभावना से एकमेक वो करके अद्भुत रूप से गढ़ा है। राम के साथ यहाँ एक पूरा का पूरा समाज है, अयोध्या में भी, चित्रकूट में भी और वन में भी, मित्र समाज भी और शत्रु समाज भी। गोस्वामी जी ने इन सब को लेकर बुनी हुई अपनी कथा में अपनी सामायिक दार्शनिक सोच को इस तरह घुला मिला दिया है कि उससे पृथक उसकी कथा का अपना कोई वजूद नहीं रह जाता। उनकी राम कथा को उनकी सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक सोच और आस्था के साथ समग्रता ही आस्वाद का विषय बनाया जा सकता है। उनकी यह कीमियागिरी है जो जनता के मस्तिष्क में जादू की तरह उतरी है। वे बड़े विश्वास के साथ जनता को अपने साथ शुरू से अंत तक लेते हैं, चलते हैं। सही है कि उनका प्रतिपाद्य उनकी यह कीमियागिरी ऐसे प्रभावों के साथ जनता के मन मस्तिष्क में उतरी है जो चली आ रही व्यवस्था के प्रति उसे भावुक बनाते हैं, उसे अपने रंग में रंग लेते हैं, व्यवस्था की तमाम असंगतियों, मानवीय अमानवीयताओं को ढक लेते हैं और बहुत से लोगों को छूट देते हैं कि वे उनके अपने आशयों के खिलाफ भी अपने आशयों में उसका इस्तेमाल करें। किंतु मात्र इस कारण से हमें तुलसी को खारिज करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास में ही हमें उस तुलसीदास को तलाशना और उभारना है। भक्ति आंदोलन की प्रशस्त चेतना के साथ जो इसी राम कथा में विद्यमान है और उस दूसरे तुलसीदास को भी पहचानना और रेखांकित करना है जहाँ वह परंपरा, आर्य शास्त्रानुमोदित व्यवस्था और विधि विधानों को सनातन मानते हुए उसके तहत सर्जनशील और प्रभावी भी है। तुलसीदास के अपने कृतित्व में ही उनके अपने व्यक्तित्व का यह जो द्वित्व है, एक जो अपने युग और समय की सीमा को लांग कर मनुष्य मात्र तक अपनी संवेदना को समान स्तर पर बांटता है, दूसरा जो अपने युग तथा पुरातन युग की सोच का अतिक्रमण न कर पाते हुए स्वतः सीमाबद्ध हो जाता है और मनुष्यता के ऊपरले वर्गों के हित में ऐसी युक्तियां करता है जो उसके पहले रूप के विरुद्ध जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी के कृतित्व के भीतर से हमें अपनी पहचान को तुलसीदास को पाना है। तुलसीदास और उनकी रचनाशीलता हमारी विरासत है, परंतु हमें अपने आलोचनात्मक विवेक को जागृत रखते हुए उस विरासत के उसी अंश को अपने साथ आगे ले चलना है जो सामाजिक प्रगति की हमारी प्रशस्त आकांक्षाओं के साथ जुड़ा है। और जाहिर है कि प्रभुत मात्रा में गोस्वामी जी की समुची रचनाशीलता में ऐसे तत्व हैं। उनकी रचनाशीलता का जो अंश उनके अपने समय तथा उनकी अपनी सोच की सीमाओं में बद्ध है, उसे जो ले जाना चाहे ले जाए, किंतु जो हमारा है उसे अपनी पूरी निष्ठा के साथ हमें स्वीकारना है। परंपरा का न तो 100% स्वीकार्य होता है और न अस्वीकार्य। हम परंपरा के उस सार्थक और सप्राण को चुनते हैं जो आगे के समयों में सप्राण अंतर्भुक्त हो सकता है। जो सीमाबद्ध हो जाता है वह हमें छोड़ देते हैं। हमारी परंपरा महती परंपरा है, उसमें बहुत कुछ त्यागने ग्रहण करने योग्य है। हमें जागृत विवेक के साथ त्याग और ग्रहण की इस मानसिकता के तहत उससे लेना और त्यागना पड़ता है। गोस्वामी जी महान है, उनकी रचनाशीलता महान है, किंतु यहाँ भी हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए त्याग और ग्रहण की इसी मानसिकता को लेकर लेना और त्यागना है। यह हमारी अपनी रुचि और विवेक का तकाजा है कि हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। गोस्वामी जी में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें स्वीकार ही नहीं करना, उसे आगे के समयों में ले जाना है। हम चर्चा कर रहे थे कि अपने परवर्ती रचनाओं में गोस्वामी जी अपेक्षाकृत अधिक यथार्थनिष्ठ हैं। यह बात कवितावली, दोहावली, बाहुक तथा विनय पत्रिका तक के लिए सही है। यह उनकी अन्य कृतियों के लिए भी कुछ अंशों में सही है जिनमें मानस भी हैं। गोस्वामी जी मध्यकालीन संतों और भक्तों की उस परंपरा के वारिस हैं सामाजिक यथार्थ की भक्ति के भाव क्षणों में भी जिसने अनदेखी नहीं की। संसार को उन्होंने माया मिथ्या नहीं माना। जीवन से परांगमुख होकर मुड़ाकर सन्यासी बनने वालों की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की है। उनके राम ठेठ जीवन संघर्षों के बीच से उनसे निपटते हुए अपना रास्ता तय करते हैं। वैसी इसी गोस्वामी जी की जनता को भी है। यदि वे जीवन से उदासीन संसार को असार मानने वाले कवि होते तो जनता के दुखों का समाज में व्याप्त अनाचार और विकृत का इतना यथार्थ और हृदयद्रावक वर्णन न करते। गोस्वामी जी ने जनता की दरिद्रता पर क्षुब्ध होकर लिखा, अकाल पर द्रवित होते हुए लिखा है। उन्होंने लोगों की भूख और अन्य व्यवस्थाओं पर करुणार्द्र होकर लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की टिप्पणी की अकाल पर जितना कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है आधुनिक कवियों ने कुल मिलाकर भी नहीं लिखा सही है। अकाल और दरिद्रता पर लिखते हुए क्षण भर के लिए गोस्वामी जी उस लोक सामान्य भावभूम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रावण दरिद्रता के प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है और उससे जनता की मुक्ति के लिए वे अपने दीन बंधु राम का आह्वान करते हैं। कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल अनट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटल गहन वन आहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तय आग बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को वणिजन चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सित्य मान सोच बस एक कहा एक एक न सो कहा जाए का करी वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत साकरे सबय पर राम रावर एक कृपा करी दारिद दसान न दबाई दूनी दीन बंधु दूरी तसा न देखी तुलसी हहा करी। अपने समय के शासक समाज पर उनकी कठोर टिप्पणी है, राज करत बिनु काज ही करे कुचाली समाज तुलसी ते दसकंध ज्यो जई है सहित समाज राज करत बिनु काज ही ठटाई जुकूर कुठात तुलसी ते कुरु राज ज्यो हुई है बारह बाट। हम कह चुके हैं कि जनता के दुख दर्द भूख और गरीबी का वे इतना यथार्थ और हृदय द्रावक वर्णन इसलिए कर पाए हैं कि वे स्वयं उसके भीतर से गुजरे थे। वस्तुतः तुलसी ने अपने समय में काफी कुछ भोगा तथा सहा था। सही है कि वे वर्ण धर्म की चार दीवारी नहीं लांघ पाए परंतु इस वर्ण धर्म के ठेकेदारों से उन्हें कम दुख और अपमान नहीं पाया था। बड़े क्षोभ के साथ बड़ी निडरता से उन्होंने धर्म तथा समाज के प्रभुओं को भी ललकारा है और उनसे कहा है कि आज तुलसीदास को राम ने अपना लिया तो वह बड़ा बन गया किंतु कल तुम लोग कहाँ थे। कहे न फूटी कौड़ी हूँ को चाहे कहीं काज सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। क्षोभ में आकर गोस्वामी जी ने वर्ण धर्म के तथा कथित रखवालों को खरी खरी सुनाई है। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुल्हा कहो को काहू के बेटी सो बेटा न व्याह काहू की जाति बिगारी न सो तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहो कछु को मांगी के खाई बो मसीत की सोई बो लेबे न एक न लेबे को एक न देवे को दो मेरी जाति पाति न चाहो काह की जाति पात मेरी को काम को न हो काहू के काम को लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। रामचरितमानस में कलयुग के वर्णन के अंतर्गत उन्होंने धर्म के ध्वजा उठाने वाले छद्म साधु संतों के चेहरों को भी बेनकाब किया है। कलयुगी संत तुलसी के कौन है। वर्तमान समय में संतों की जो बिरादरी हमारी आंखों के सामने है उससे उनका मिलान करें तो हम पाएंगे कि कलयुगी संतों के बारे में गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है वह सोलहों आने सच हमारी आंखों के सामने है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन मार्ग सोई जा कह जोई भावा पंडित सोई जुगाल बजावा मिथ्या आरंभ दंतरत जोई ताकह संत कहे सब कोई सोई सयान जो पर धनहारी जो कर दंभ सुबड़ आचारी जो कह झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सुविरागी जाके नख और जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्छ जेकाय ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलयुग माय। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी सदैव गुरु गंभीर धर्म और नीति के उपदेशक भक्ति का आध्यात्म भक्ति तथा आध्यात्म की चिंता में डूबे ही हमारे सामने आए हों। वे अत्यंत कोमल और मृदुल संवेदनाओं के साथ भी हमसे लगभग प्रत्येक तिथि में मुखातिब हुए हैं। ये तुलसी ही हैं जो विवाह पूर्व सीता और राम की परस्पर अनुरक्ति का वर्णन करते हैं। विवाह के मंडप में बैठी कंकड़ के नग में राम का प्रतिबिंब निहारने वाली जानकी से हमें परिचित कराते हैं। राम जानकी विवाह प्रसंग में परिवार जनों के बीच होने वाले हास परिहास में रस लेते हैं। मांगलिक अवसरों पर उभर उठने वाले उल्लास को मुग्ध होकर वाणी प्रदान करते हैं। राम वन गमन के प्रसंग में ग्राम वधुओं की मनोरम कानाफूसी तथा सीता और उनके बीच होने वाली इशारेबाजी का भाव सहृदयता के साथ चित्रण करते हैं। रामलला नाचों में गोस्वामी जी की रसिकता को देखें। अहिरी निहाथ दहेड़ी सगुन ले यावही हो उतरत जोबन नृपति मन भावही हो रूप सलोनी ते बोली निबीरन हाथ ही हो जाकी और बिलो कहीं मन ते ही साथ ही हो काहे राम जीव सांवर लक्ष्मण गोर हो की दहु रानी कौशल ही परिगा भोर हो राम अहि दशरथ के लक्ष्मण लक्ष्मण आनक हो भरत शत्रुधन भाई तो श्री रघुनायक हो। और बरवे रामायण में सखियों का हास परिहास गोस्वामी जी के जी ही जिसके चितेरे हैं। का घूंघट मुह मुदहु नौला नारी चांद सरग पर सोहत यह अनुहारी गर्व करहु रघुनंदन जन मन माही देखहु आपन मूरत से के छाही उठी सखी हसी मिस करी कही विदुबैन सिय रघुबर के भय उनी दे नैन। समग्रतः तुलसी लोक जीवन की मधुर तिक्त अनुभूतियों के मुग्ध और सजग गायक हैं। लोक जीवन की नाना छवियों को उनकी रचनाओं में उनकी जीवंतता में देखा जा सकता है। वे अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध करने की सलाह देने वाले और राम के रूप में उसका उदाहरण पेश करने वाले समाज दृष्टा हैं। वे आत्मसम्मान से दीप्त एक निर्भीक जननायक हैं। अकबर के शासन काल में उसके राज्य से बढ़कर राम राज्य का आदर्श वही पेश करते थे। वे जीवन की बहुरंगी छवियों के उसकी समग्रता के कवि हैं। लोक चित्त में उनकी पैठ की मिसाल नहीं है। लोकप्रियता में वे अनन्य हैं। उनकी सोच की सीमाएं हैं किंतु भारतीय जनता विशेषतः हिंदी प्रदेश की जनता से उन्हें जो आत्मीयता मिली है वह उनकी शक्ति का प्रमाण है। इस आत्मीयता के बड़े जीवित और जागृत संदर्भ हैं जिनकी उपेक्षा करके तुलसी की सही छवि को आंका नहीं जा सकता।